प्रत्यक्षा होती है शाम को, लेकिन कोई त्योहार हो तो फिर हम लोग कोशिश कहते हैं करते हैं कि गीता की कक्षा के स्थान पर उस त्योहार के विषय में ही चर्चा की जाए। आज बहुत ही पवित्र दिन है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर चार त्योहार लिखे हुए हैं, चार त्योहार लिखे हुए हैं। कौन कौन से हैं? पहला त्योहार क्या लिखा है? है श्री कृष्ण रास यात्रा। श्री कृष्ण रास यात्रा है आज, और तुलसी शालिग्राम विवाह है दूसरा, और है आविर्भाव श्रीपाद निम्बार्काचार्य। क्यों नहीं पढ़ पा रहे? क्या साफ साफ नहीं लिखा है? नहीं लिखा साफ साफ? लिखा नहीं लिखा? श्रीपाद निम्बार्काचार्य का आविर्भाव है आज। तीसरा हो गया, और चौथा क्या है? कात्यायनी व्रत प्रारंभ, एक महीने के लिए कात्यायनी व्रत प्रारंभ। कार्तिक व्रत हुआ एक महीने का, अब एक महीने का कात्यायनी व्रत है ना। तो इस तरह से आज के दिन चार त्योहार हैं। सब लोग आए नहीं जिनको आना था? क्यों हरि बोल, सब लोग नहीं आए? आपके साथ जो थे सब लोग आ गए? दो तीन लोग नहीं आए, तो हम लोग कीर्तन करेंगे। मेरे पीछे बोलिए, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा, जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा, जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, नितय गौर हरि बोल हरि बोल
करीबो
सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदिर डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्री कृष्ण रास यात्रा महामहोत्सव की जय। श्री तुलसी शालिग्राम विवाह महामहोत्सव की जय। श्री पाद निम्बार्काचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। तो चार त्योहारों में से सबसे पहले हम चर्चा करेंगे श्रीपाद निम्बार्काचार्य का आविर्भाव। तो उनके विषय में गौड़ी वैष्णव चरितामृत में कुछ बातें लिखी हैं, इनको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। सब लोग सुनेंगे ध्यान से? सुनिए ध्यान से। चैतन्य महाप्रभु के अवतार से 300 साल पहले ये हुए निम्बार्काचार्य। चैतन्य महाप्रभु के अवतार से भी 300 साल पहले इनका जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म किस वर्ष में हुआ था? कौन बताएगा? चैतन्य महाप्रभु का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1486। सन 1486 में हुआ था। तो निम्बार्काचार्य उनसे भी 300 साल पहले, तो कितना हुआ? 1486 से 300 साल पहले 1186 के आसपास हुआ था। तो निम्बार्क आचार्य ने सबसे पहले तो शिव जी की उपासना की थी। किसकी उपासना की थी? शिव जी की। कहाँ पर? रुद्रद्वीप में, जो नवद्वीप है, नवद्वीप धाम है। नवद्वीप धाम में से रुद्रद्वीप में इन्होंने शिव जी की उपासना की थी। नवद्वीप में 9 द्वीप हैं, नदियों के बीच में 9 द्वीप हैं। रुद्रद्वीप में शिव जी की उपासना की थी और शिव जी उनसे प्रकट हुए उनके सामने और आज्ञा दी कि समीप में स्थित जो चार कुमार हैं ये ध्यानस्थ हैं, ध्यान में लगे हैं, इनसे दीक्षा ग्रहण करो। शिव जी ने इनको आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि पास में चार कुमार बैठे ध्यान कर रहे हैं, इनसे आप दीक्षा ग्रहण करो। शिवजी ने किसको आदेश दिया? किसको? निम्बार्काचार्य को आदेश दिया, है ना। तो निम्बार्काचार्य ने जो है राधा कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। किनसे? चार कुमारों से मंत्र दीक्षा प्राप्त की। राधा कृष्ण ने मंत्र की दीक्षा प्राप्त की चार कुमारों से। और सनत कुमार संहिता की शिक्षाओं का पालन करते हुए राधा कृष्ण की आराधना की इन्होंने। और फिर निम्बार्क के सामने राधा कृष्ण प्रकट हुए। देखो कितना आश्चर्य है। शिव जी की आराधना की, शंकर जी प्रकट हुए, शंकर जी ने आदेश दिया कि चार कुमारों से दीक्षा लो, तो चार कुमारों से राधा कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया और फिर राधा कृष्ण की पूजा करते रहे तो राधा कृष्ण प्रकट हो गए। अब राधा कृष्ण प्रकट हुए और फिर दोनों मिल करके गौरांग महाप्रभु का रूप बन गए। सोचिए, हरि बोल, गौरांग महाप्रभु के रूप में। गौरांग महाप्रभु का अवतार तो 300 साल के बाद हुआ, लेकिन इनको दर्शन दिया उन्होंने अपने जन्म से 300 साल पहले ही। गौरांग महाप्रभु ने अपना दर्शन दिया है? और कैसे दर्शन दिया? पहले राधा कृष्ण के रूप में दर्शन दिया और राधा कृष्ण मिल करके गौरांग महाप्रभु बन गए इस तरह से। और गौरांग महाप्रभु ने कहा कि हे निम्बार्क, भविष्य में जब मैं अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ करूंगा, भविष्य मतलब 300 साल के बाद जब मैं अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ करूंगा, तब मैं स्वयं अचिंत भेदाभेद तत्व के पूर्ण दिव्य सिद्धांत का प्रचार करूंगा। अचिंत भेदाभेद तत्व, निम्बार्काचार्य का जो सिद्धांत है वो क्या है? द्वैताद्वैतवाद। जो चार वैष्णव संप्रदाय हैं उनके अलग अलग सिद्धांत हैं, है ना? मायावादी संप्रदाय का सिद्धांत तो अद्वैतवाद है, उसके खंडन में वैष्णवों के जो चार संप्रदाय हैं उनमें से एक रामानुज संप्रदाय है, तो उसका सिद्धांत है विशिष्टाद्वैतवाद। दूसरा मध्व संप्रदाय है, उसका सिद्धांत है द्वैतवाद, है ना? और तीसरा विष्णु स्वामी संप्रदाय है, है? तो उनका सिद्धांत है शुद्धाद्वैतवाद। और चौथा निम्बार्क संप्रदाय है, उसका सिद्धांत है द्वैताद्वैतवाद। ये चारों वैष्णव संप्रदायों के चार अलग अलग सिद्धांत हैं और चारों के सिद्धांत अद्वैतवाद के विरोधी हैं, जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं आगे चल करके एक अलग ही सिद्धांत स्थापित करूंगा, उसका नाम होगा अचिंत भेदाभेद तत्व। और भगवान ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने, कि मैं मध्व संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय और विष्णु स्वामी के संप्रदाय के सार ग्रहण करूंगा। हे निम्बार्क, तुम्हारे संप्रदाय से मैं दो महत्वपूर्ण सिद्धांत लूंगा। पहला, श्रीमती राधा रानी की शरण ग्रहण करने की आवश्यकता, और दूसरा, श्री कृष्ण के प्रति ब्रज गोपियों के प्रेम का महान सम्मान। ये दो सिद्धांत मैं तुम्हारे संप्रदाय से लूंगा। भगवान कहते हैं कि चारों वैष्णव संप्रदायों से मैं दो दो सिद्धांत लूंगा, तो तुम्हारे संप्रदाय से मैं दो सिद्धांत ये लूंगा। पहला सिद्धांत क्या? श्रीमती राधा रानी की शरण लेने की आवश्यकता। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमें आवश्यक है क्या? श्रीमती राधा रानी की शरण लें। और दूसरा, बहुत सम्मान होना चाहिए। किसका? गोपियों के प्रेम का। गोपियों के प्रेम का बहुत सम्मान होना चाहिए। निम्बार्क को उपदेश देने के बाद गौरांग महाप्रभु अंतर्धान हो गए, अंतर्धान हो गए। हाँ, और निम्बार्क स्नेह के आंसू बहाते हुए अपना प्रचार कार्य आरंभ करने के लिए नवद्वीप से चले गए। फिर चैतन्य लीला में यही निम्बार्क केशव कश्मीरी के रूप में प्रकट हुए और साक्षात निमाई पंडित से कृष्ण प्रेम प्राप्त किया था। गौड़ी सिद्धांतों और निम्बार्क के सिद्धांतों में बहुत समानताएं हैं। निम्बार्क के अनुयायी भी शरणागति की छह विधि स्वीकार करते हैं और भक्ति के 9 अंगों का अभ्यास करते हैं और 10 मूल में विश्वास करते हैं। गौड़ी सिद्धांत और निम्बार्क सिद्धांत देवी वृंदावन में राधा कृष्ण की उपासना करते हैं और सर्वोत्कृष्ट भक्त के रूप में श्रीमती राधा रानी की आराधना करते हैं और वे कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को सर्वोच्च मानते हैं। भजन कीर्तन और जप माला पर जप करते हुए निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी महामंत्र के अपने विशिष्ट पाठ राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे का उच्चारण करते हैं। हम लोग जहाँ हरे कृष्णा इस तरह से बोलते हैं, तो इस तरह से ये लोग जो है राधे कृष्ण बोलते हैं, और जहाँ हरे राम बोलते हैं वहाँ पर ये लोग बोलते हैं राधे श्याम। वृंदावन में गोवर्धन से लगभग 1 मील दूर नीम गांव नामक एक ग्राम है जो निम्बार्काचार्य के नाम पर आधारित है, जहाँ ये बाल्यकाल से रहते थे और बाद में इन्होंने वहाँ पर भजन किया। वृंदावन में राधा कृष्ण की अधिकांश लीला स्थलियों का अनुरक्षण निम्बार्क संप्रदाय द्वारा किया जा रहा है। मथुरा वृंदावन में असंख्य भक्त निम्बार्क के भक्ति मार्ग का पालन करते हैं। वृंदावन में लोई बाजार से कुछ दूरी पर रेतिया बाजार में स्थित श्रीजी मंदिर निम्बार्क संप्रदाय का केंद्र है। श्रीपाद निम्बार्काचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। अब तुलसी शालिग्राम विवाह के बारे में कुछ चर्चा करेंगे हम। तुलसी शालिग्राम विवाह, तुलसी जो है भगवान की एक शक्ति है, तुलसी देवी लक्ष्मी जी का ही एक अंश है तुलसी देवी, और इनका नाम वृंदा था, राजा धर्मध्वज की कन्या थी। इनका विवाह हुआ था संगचूड़ नाम के एक यक्ष से, और फिर आगे चल कर के संगचूड़ ने इतनी अपनी शक्ति दिखलाई कि सब देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली, और सब देवता लोग जो है फिर भगवान विष्णु के पास आए और प्रार्थना की कि संगचूड़ का कैसे विनाश हो सकता है। तो भगवान ने कहा कि उसकी जो पत्नी है तुलसी, तो उसके पातिव्रत के प्रभाव से संगचूड़ देवताओं पर विजय प्राप्त कर रहा है, तो संगचूड़ को पराजित करने के लिए ये आवश्यक है कि मैं तुलसी का पातिव्रत भंग करूं। तो भगवान ने जो है देवताओं से ऐसा कहा, और फिर भगवान संगचूड़ का रूप धारण करके आए, और संगचूड़ उस समय शिवजी के साथ युद्ध कर रहे थे, और शिवजी को भगवान ने विशेष त्रिशूल दिया था संगचूड़ का वध करने के लिए। तो भगवान जो है जब तुलसी के महल में आए, महल के द्वार पर आए, तो तुलसी जो है अपने पति को जो है देखना चाहती थी कि वो विजयी होके आए, लेकिन भगवान तो उसके पति को मरवाना चाहते थे, तो इसलिए भगवान ने संगचूड़ का रूप धारण किया और उन्होंने आदेश दिया बाजे बजाने वालों को कि विजय की दुंदुभी बजवाओ कि मैं विजयी होकर के आया हूँ। और इस तरह से तुलसी ने अपने महल का द्वार खोला कि मेरे पति विजयी होकर आए, और भगवान जो है संगचूड़ के रूप में महल के अंदर गए, और तुलसी ने हंस हंस करके पूछा कि आपने कैसे विजय प्राप्त की। तो भगवान ने झूठी बातें बता बता करके तुलसी को जो है समझाया कि मैंने ऐसे विजय प्राप्त की। इस प्रकार से हंसी की बातें करते करते दोनों सो गए, और भगवान ने तुलसी का पातिव्रत भंग किया। और यहाँ तुलसी का पातिव्रत भंग हुआ तो संगचूड़ का जो है सिर शिवजी ने जो है त्रिशूल से काट दिया, और संगचूड़ गोलोक धाम में चले गए, क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त थे, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, वो सुदामा नाम के गोप थे। इसके बाद फिर तुलसी को जो है कुछ समझ में आया कि ये जो है मेरे पति नहीं है, क्योंकि भगवान का स्पर्श तो अलग ही दिव्य है, कोई भौतिक शरीर तो है नहीं भगवान का, भगवान का स्पर्श तो बिल्कुल अलग दिव्य है। तो उसको समझ में आ गया कि ये मेरे पति नहीं है, तो उसने जो है शंका की कि आप मेरे पति नहीं हैं, आप बताइए आप कौन हैं। तो भगवान ने अपना रूप प्रकट किया, अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। तो तुलसी को जो है भगवान से बड़ी शिकायत हुई कि आपने जो है मुझे धोखा दिया, मेरे पति को मरवाया। तो भगवान ने उसको समझाया कि तुमने मुझे पति बनाने के लिए जो विशेष तपस्या की थी, उसके कारण ही मैंने तुम्हें अपनी पत्नी बनाया है। और चूंकि उसने तुम्हें प्राप्त करने की तपस्या की थी, इसलिए तुम उसे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई हो। अब समय आ गया है कि तुम अब मेरी पत्नी बनोगी। तो भगवान के द्वारा कभी भी धर्म का उल्लंघन नहीं होता है। कभी लगता है कि भगवान धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं, भगवान के द्वारा कभी धर्म का उल्लंघन नहीं होता है। लेकिन तुलसी ने यह मान करके कि भगवान ने धर्म का उल्लंघन किया है, तो भगवान को श्राप दिया कि आप शालिग्राम, आप जो है पत्थर बन जाइए। तो तुलसी ने भगवान को पत्थर बनने का श्राप दिया, तो भगवान ने तुलसी के श्राप को स्वीकार किया। यह भी भगवान ने धर्म की स्थापना करने के लिए तुलसी के श्राप को स्वीकार किया। यहां भी भगवान धर्म की स्थापना कर रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने धर्म का उल्लंघन किया है, तो उन्होंने उस दंड को स्वीकार किया कि भगवान जो है पत्थर बन गए। लेकिन पत्थर के रूप में भी भगवान की उतनी ही शक्तियां हैं और उनकी उतनी ही सब जो है क्षमताएं हैं। भगवान की क्षमता में कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो पत्थर बन गए तो वो जो है कोई अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, उनके पास संपूर्ण शक्तियां हैं। तो शालिग्राम के रूप में भी भगवान जो है पत्थर के रूप में भी भगवान है, साक्षात भगवान है। तो शालिग्राम की स्थापना नहीं करनी पड़ती है, अर्चा विग्रहों की स्थापना करनी पड़ती है, शालिग्राम की स्थापना नहीं करनी पड़ती है, वो तो स्वयं भगवान है शालिग्राम के रूप में। और भगवान ने तुलसी को जो है वरदान दिया कि तुम वृक्ष के रूप में तुम मेरी बहुत ही प्रिया बनोगी, तुम्हारे जो पत्ते हैं वो बहुत ही पवित्र माने जाएंगे, और तुम्हारे पत्तों से जब मेरे चरणों में चढ़ाए जाएंगे तो मैं सब प्रकार के फूलों से बढ़ कर के मैं प्रसन्न होऊंगा तुम्हारे पत्तों के चढ़ाए जाने के कारण। तो इस तरह से भगवान ने तुलसी को बहुत से वरदान दिए। तो यही तुलसी शालिग्राम विवाह की घटना है। तो अब हम सुनेंगे कात्यायनी व्रत। कात्यायनी व्रत कात्यायनी व्रत में गर्ग संहिता से सुना रहा हूं। भगवान कृष्ण की लीला में अनेक प्रकार की गोपियां हैं, उनमें से कुछ गोपियां मिथिलापुर वासिनी हैं। भगवान राम के समय जब भगवान राम मिथिला में गए और सीता देवी से विवाह किया, तो मिथिला की अनेक स्त्रियां भगवान राम को पति बनाना चाहती थीं। तो उन्होंने प्रार्थना की थी कि आप हमारे पति बनिए। तो भगवान ने कहा कि इस जीवन में तुम्हें एक पत्नी व्रत है मेरा, लेकिन अगले जन्म में तुम लोग ब्रज में गोपी बनोगी और मैं तुम्हारे मनोरथ पूरे करूँगा। तो इन्हीं की कथा इसमें आती है। नारद जी सुना रहे हैं राजा बहुलाशु को। नारद जी कहते हैं, हे राजन, अब मिथिला देश में उत्पन्न गोपियों की कथा सुनो। आज ये जो राजा हैं बहुलाशु, ये भी मिथिला के ही राजा हैं। भगवान राम के समय में इनके ही वंश में जो राजा थे, विस्तीरध्वज नाम के जनक थे, जिनकी पुत्री सीता से भगवान राम का विवाह हुआ था, और उन्हीं की ही वंश परंपरा में अभी बहुलाशु नाम के जनक हैं जो इस कथा को नारद जी के द्वारा सुन रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं, राजन, मिथिला देश में उत्पन्न गोपियों की कथा सुनो। इस कथा को सुनने से पता है कितना फल मिलेगा। दशाश्वमेध तीर्थ पर स्नान करने का फल मिलता है। इस कथा को सुनने से कितना फल मिलता है? दशाश्वमेध तीर्थ पर स्नान करने का फल मिलता है। अब कौन जाएगा दशाश्वमेध तीर्थ पर स्नान करने के लिए, लेकिन बैठे बैठे स्नान का फल मिलने वाला है। तो अगर आप लोग पाना चाहते हो तो सुनो कथा ध्यान से। पाना चाहते हो? कौन लोग पाना चाहते हैं कथा? दशाश्वमेध तीर्थ पर स्नान का फल मिलेगा और भक्ति भाव को बढ़ाएगा अगर सुनेंगे। मैथिली नाम गोपिका नाम आख्यानम श्रृणु मैथिल दशाश्वमेध तीर्थस्य फलदम भक्ति वर्धनम। श्री राम के वर से जो नौ नंदों के घरों में उत्पन्न हुई थी वे मिथिला रूपा गोप कन्याएं परम कमनीय नंद नंदन का दर्शन करके उन पर मोहित हो गई। नौ नंदों के घरों में उत्पन्न हुई थी ये। कृष्ण के पिता नंद नहीं है, कृष्ण के पिता है नंदराज। नंदराज उसे कहते हैं जिसके पास 1 करोड़ गौएं हों। तो कृष्ण के पिता नंद नहीं है, नंदराज है। नंदराज एक ही है, जबकि नंद कितने हैं? 9। नंद किसे कहते हैं? जिसके पास 9 लाख गौएं हों। तो ब्रज में ऐसे 9 नंद हैं और कृष्ण के पिता नंद नहीं है। कृष्ण के पिता कौन है? कौन है? नंदराज है ना। तो इन्होंने, इन कन्याओं ने जन्म लिया 9 नंदों के घरों में और परम सुंदर नंद नंदन का दर्शन करके उन पर मोहित हो गई। श्री रामस्य वराज ज्ञाता नव नंद गृह सुजा कमनीयम नंद सोनुम दृष्ट्वा ताम मोहमास्थिता। इन्होंने मार्ग शीर्ष के शुभ मास में कात्यायनी का व्रत किया। तो आज मार्ग शीर्ष महीने का पहला दिन है तो आज प्रारंभ किया इन्होंने कात्यायनी का व्रत प्रारंभ किया और उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाकर षोडश उपचार से पूजा करने लगी। मार्ग शीर्षे शुभे मासे चक्रो कात्यायनी व्रतम उपचार षोडश भी कृत्वा देवी मही मही। सूर्योदय की बेला में नहीं, सूर्योदय की बेला नहीं, अरुणोदय, सूर्य के उदय से पहले अरुण उदय होता है। अरुण सूर्य का साथी अरुण है। तो सबसे पहले सारथी दिखाई पड़ता है, बाद में सूर्य का उदय होता है क्योंकि सारथी आगे है रथ में और सूर्य पीछे हैं। तो सबसे पहले उदय होता है किसका? अरुण का, अरुण उदय। लाली आती है आकाश में और बाद में होता है सूर्योदय। तो अरुणोदय पहले होता है। तो अरुणोदय की बेला में प्रतिदिन एक साथ श्री कृष्ण के गुण गाती हुई आती थी, यमुना जी के जल में स्नान करती थी। आज से शुरू किया है और कितनी छोटी कन्या है सोचिए, और कितनी ठंड है और यमुना जी के ठंडे पानी में स्नान करना। अरुणोदय वेलायाम स्नाता श्री यमुना जले नित्यम समेता आजगमुर गायंत्यो भगवन गुणान। एक दिन ये ब्रज कन्याएं अपने वस्त्र यमुना जी के किनारे रखकर जल में प्रविष्ट हुई और दोनों हाथों से जल उलीच कर एक दूसरे को भिगोती हुई जल विहार करने लगी। एकदा ता स्ववस्त्राणि तीरे न्यस्य ब्रजांगना विजहृदमुना तो ये कराभ्याम सिंच तीर्मिथा। प्रातःकाल भगवान श्याम सुंदर वहां आए और तुरंत उन सबके वस्त्र लेकर कदम पर आरूढ़ हो चोर की तरह चुपचाप बैठ गए। भगवान आए हैं तासाम वासांसि सन्नीय भगवान प्रातरागतः त्वरम कदम्ब मारोह चौरवन मौनमास्थितः। हे राजन, अपने वस्त्रों को ना देखकर वे गोप कन्याएं बड़े विस्मय में पड़ी। बड़े विस्मय पड़ी कि गोप कन्या स्नान करती जहाँ वो स्थान कैसा होता है? निर्जन होता है, वहां पर कोई पुरुष नहीं आता है। तो यहाँ पर तो कोई आया नहीं, किसी पुरुष के चिन्ह भी नहीं है और हमारे वस्त्र कहाँ चले गए? विस्मय पड़ी और कदम पर बैठे हुए श्याम सुंदर को देखकर लजा गई और हंसने लगी। ना तान वीक्षे स्वभासांसी विस्मिता गोपकन्यका निपस्थितं विलोक्याथ सलज्जा जह सुरनप। तब वृक्ष पर बैठे श्री कृष्ण उन कन्याओं से कहने लगे, तुम सब लोग यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ, अन्यथा मैं नहीं दूंगा। प्रतिच्छन्तु सवासांसि सर्वा आगत्य चात्र वै अन्यथा नहि दास्यामि वृक्षात् कृष्ण उवाचः। हे राजन, तभी गोप कन्याएं शीतल जल के भीतर खड़ी खड़ी हंसती हुई लज्जा से मुंह नीचे करके बोली, राजन्त्यस्ता शीत जले हसन्त्या प्राहुरानताम्। बोली गोपियों ने कहा, हे मनोहर नंद नंदन, हे गोप रत्न, हे गोपाल वंश के नूतन हंस, हे महान पीड़ा को हर लेने वाले श्री श्याम सुंदर, तुम जो आज्ञा दोगे हम वही करेंगी। तुम्हारी दासी होकर भी हम यहाँ वस्त्रहीन होकर कैसे रहें। कितना अच्छा उन्होंने तर्क दिया कि आपकी जो आज्ञा होगी वो हम करेंगे, लेकिन हम आपकी दासी हैं तो हमारे लिए ये कितनी लज्जा की बात है कि हम वस्त्रहीन हैं, है? आपकी दासी होकर के, और ये आपके लिए बड़ी लज्जा की बात है, हम आपकी दासियाँ और वस्त्रहीन होकर के कैसे रहें, है ना? अच्छा तर्क दिया ना। बोली, आप जो आज्ञा देंगे हम वही करेंगे। आपकी दासी होकर भी हम यहाँ वस्त्रहीन होकर, आपकी दासियों को वस्त्र ना मिले, वस्त्रहीन हो, है? ये आपके ही लिए बड़ी लज्जा की बात है, है? असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी भगवान और उनकी दासियों को वस्त्र ना मिले, है? कितनी लज्जा की बात है भगवान के लिए। तो उन्होंने ये तर्क दिया, हे नंद नंदन मनोहर गोप रत्न गोपाल वंश नव हंस महातिहारिम श्री श्याम सुंदर तवोदित मध्य वाक्यम कुर्मः कथम विवसना किल ते पिदास्यः। आप गोपियों के वस्त्र लूटने वाले और माखन चोर हैं, ब्रज में जन्म लेकर भी बड़े रसिक हैं। आपने जन्म लिया ब्रज में और फिर भी बहुत रसिक हैं। ब्रज में जो जन्म लेते हैं वे गऊओं की सेवा में लगे रहते हैं, तो उनकी उनके मुख में हंसी थोड़ी होती है, बड़े गंभीरता से अपने काम, लेकिन आप में वो चीज़ नहीं है, आप तो रसिक हैं। ब्रज में जन्म लेकर के भी आप बड़े रसिक हैं, भय तो आपको छू भी नहीं सका है, भय भी आपसे भयभीत है। हमारे वस्त्र हमें लौटा दीजिए, नहीं तो हम मथुरा के राजा के दरबार में आपके द्वारा इस अवसर पर की गई अन्याय की शिकायत करेंगी, मथुरा के राजा से अन्याय की शिकायत करेंगी। गोपांगना वसन मुन नवनीत हारी जातो ब्रजे तिरसिका किल नर्भयो से वासांसि देहि नहि चिन मथुराधिपाय वक्ष्यामहे नय मति कृतं त्वयात्र। अब भगवान ने क्या उत्तर दिया? श्री भगवान बोले, सुंदर मंद हास्य से शोभित होने वाली हे गोपांगनाओ, यदि तुम मेरी दासियां हो तो इस कदम्ब की जल के पास आकर अपने वस्त्र ले लो, अगर तुम मेरी दासियां हो, है ना? तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान का तर्क यह है कि इस समय तो मैं ही हूँ देखने वाला, और तो कोई पुरुष नहीं है, है? और तुमने अगर आत्मसमर्पण किया है तो मेरे सामने आओ, नहीं तो मैं इन सब वस्त्रों को अपने घर उठाकर ले जाऊंगा। अब तुम अविलंब मेरे कथनानुसार कार्य करो। दास्यो ममे यदि सुंदर मंदहासा इच्छन्तु वेति किल चात्र कदम्ब मूले नोचे समस्त वसनानि नयामि गेहान तस्मात् करिष्यति ममे वचो विलंबा। नारद जी कहते, हे राजन, तब वे सब ब्रजवासिनी कन्याएं जाड़े से कांपती हुई जल से बाहर निकली और आनत शरीर हो हाथों से योनि को ढककर शीत से कष्ट पाती हुई श्री कृष्ण के हाथ से दिए गए वस्त्र लेकर उन्होंने अपने अंगों में धारण किए। इसके बाद श्री कृष्ण को लजीली आंखों से देखती हुई उन पर मोहित होकर खड़ी रही। तदाता निर्गता सर्वा जलान गोप्यो वेपिता आनता योनिमाच्छाद्य पाणिभ्याम शीतकर्षिता कृष्ण दत्ता निवासांसी ददु सर्वा ब्रजांगना मोहिता शाश्वतास्तत्र कृष्णे लज्जा इति क्षणा। उनके परम प्रेम सूचक अभिप्राय को जानकर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन पर चारों ओर से देखते हुए इस प्रकार बोले, ज्ञात्वा तासाम अभिप्रायम् परम प्रेम लक्षणम् आह मंदस्मिता कृष्ण समन्तान् वीक्षिता वचः। श्री भगवान ने कहा, हे गोपांगनाओ, तुमने मार्ग शीर्ष मास में मेरी प्राप्ति के लिए जो कात्यायनी व्रत किया है वो अवश्य सफल होगा, इसमें संशय नहीं है। श्री भगवान वाच भवती फिर मार्ग शीर्षे कृतम कात्यायनी व्रतम मदर्थम तच्च सफलम भविष्यति न संशयः। परसों के दिन वन के भीतर यमुना के मनोहर तट पर मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा जो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने वाला होगा। परसोहन जाटव्याम कृष्णा तीरे मनोहरे युष्माभिश्चा करिष्यामी रासम पूर्ण मनोरथम। यों कहकर परिपूर्णतम श्री हरि जब चले गए तब आनंद उल्लास से परिपूर्ण हो मंद हास की छटा बिखेरती हुई वे समस्त गोपबालाएं अपने घरों को चली गई। इत्युक्त्वाथ गते कृष्णे परिपूर्णतमे हरौं प्राप्तानन्दा मंदहासा गोप्या सर्वा गृहान ययुः। तो ये बड़ी सुंदर कथा हमने सुनी जिसमें भगवान ने वस्त्र हरण किए थे। ये मिथिलापुरवासिनी गोपियां हैं जिनका ये विशेष चरित्र है। अब हम सुनेंगे एक लीला। कौन सी लीला? चार में से कौन सा रह गया? रास यात्रा। तो भगवान कृष्ण ने रास लीला की है तो शरद पूर्णिमा के दिन भी की, लगभग सभी पूर्णिमा में, क्योंकि रात्रि का अंधकार जब दूर होता है तभी भगवान रास करते हैं, तो पूर्णिमा में ही रात्रि का अंधकार दूर होता है तो पूर्णिमा में भगवान रास करते हैं। यानी कार्तिक पूर्णिमा, आज जो है कार्तिक पूर्णिमा है, क्योंकि पूर्णिमा वैसे पड़ नहीं रही है इसलिए आज कार्तिक पूर्णिमा का भी दिन माना जा रहा है और मार्ग शीर्ष की प्रतिपदा का भी दिन माना जा रहा है, दोनों। तो आज कार्तिक की पूर्णिमा का भी दिन माना जा रहा है। तो ये घटना उस समय की है जब भगवान ने उद्धव जी को भेजा था। कहाँ से कहाँ भेजा था? मथुरा से वृंदावन भेजा था उद्धव जी को। उद्धव जी मिले थे, नंद यशोदा से मिले थे और गोपियों से मिले, राधा रानी से मिले। तो नंद यशोदा को तो समझा दिया किसी प्रकार से और वे तो मान गए, लेकिन जब गोपियों की राधा रानी की दशा देखी तो उद्धव जी इतने व्यग्र हो गए कि उन्होंने वचन दिया कि मैं कृष्ण को जरूर लेकर के आऊंगा और मैं वचन देता हूं, वचन दे दिया। तो उस वचन के अनुसार फिर कृष्ण आए मथुरा, मथुरा से वृंदावन आए। तो ये बात वैसे और दूसरे ग्रंथों में नहीं मिलती है, इन गर्ग संहिता में मिलती है कि कृष्ण मथुरा से वृंदावन आए हैं। और जब आए तो बहुत सुंदर लीला हुई, भगवान ने फिर से रासलीला करी, मथुरा से आकर के वृंदावन में रासलीला करी और वो रासलीला आज के दिन की है, कार्तिक पूर्णिमा की रासलीला है। तो राजा बहुलाश से पूछते हैं, किससे पूछते हैं? महाराज जी से। हे मुने, साक्षात भगवान ने ब्रज मंडल में पधार कर आगे कौन सा कार्य किया? श्री राधा और गोपांगनाओं को किस प्रकार दर्शन दिया? गोपियों के मनोरथ पूर्ण करके वे पुनः मथुरा में कैसे आए? हे महाराज, आप बताने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः ये सब बातें मुझे बताइए। अग्रे चकार किम साक्षात भगवान ब्रजमंडले राधाय गोपिकाभ्यश्च कथं सुदर्शनं ददौ गोपी मनोरथं कृत्वा मथुराम आजगामः एतन्मे ब्रूहि विप्रेन्द्र त्वं परावर वित्तमः। अब सुनिए बड़े ध्यान से, आज के दिन की घटना है। संध्या काल में नारद जी ने कहा, हे राजन, संध्या काल में श्री राधा का बुलावा पाकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण कदली वन के एकांत प्रदेश में गए, जो सदा शीतल होता है। कदली वन, कदली में, कदली का मतलब केला, केला का जंगल, केले के जंगल में कितनी ठंडक होगी, है ना। आज के दिन, आज का तो वैसे भी ठंड का समय है, और उसमें भी राधा रानी केले के जंगल में रहती थी। क्यों? क्योंकि विरह की आग को शांत करने के लिए उनको जो है ये जो ठंड का समय है ये पर्याप्त नहीं था, इसलिए इतनी ठंड में भी राधा रानी केले के जंगल में रहती हैं, कदली वन में रहती हैं। है? तो वहां पर एकांत में भगवान आए। संध्यायाम राधया हूता श्री कृष्णो भगवान स्वयं एकांते शीतलम सस्वन जगामे कदली वनम। जहां पर फुहारे चलते थे, देखो इतना ठंडा, उसमें भी फुहारा चल रहा है। क्यों? राधा रानी की विरह की आग शांत करने के लिए उसमें भी वह फुहारा चलते थे। ऐसा मेघ मंडल था, रंभा द्वारा चंदन छिड़का जाता था। यमुना जी को छूकर प्रवाहित होने वाली मंद वायु ठंडे जल के कण बिखेरती थी। यमुना जी का भी जो है ठंडा पानी है, फुहारें आ रही, और चंद्रमा की किरणों से निरंतर अमृत झरता था। स्फारन स्फुरन मेघ गृहम रंभा चंदन चर्चितम कृष्णा गुरु सीकरम कृष्णा गुरुत सीकरम चा सुधारश्मि गलत सुधम। ऐसा शीतल कदली वन भी श्री राधा के विरह अग्नि की आंच से भस्म हो गया। देखो, सोचिए, राधा रानी की विरह अग्नि से वो कदली केले का वन भी क्या हो गया, भस्म भस्म हो गया। कितना विरह राधा रानी को कृष्ण के विरह का, कितना जो है अग्नि है कि वो केले का वन भी जो है भस्म हो गया। श्री कृष्ण से मिलन की आशा ही श्री राधा की निरंतर रक्षा कर रही थी। कृष्ण ने कहा था कि मैं आऊंगा, अगर कृष्ण ने ये ना कहा होता तो राधा रानी प्राण छोड़ देती। तो कृष्ण की ये जो बात थी कि मैं आऊंगा, यही आशा ही राधा की निरंतर रक्षा कर रही थी। ये तादृशम बनम राधा वियोगानल वर्चसा भस्मी भूतम हि सततम कृष्णासा ताम हि रक्षति। वहीं पर गोपियों के सारे यूथ आ जुटे, जो सैकड़ों की संख्या में थे। कई प्रकार की गोपियां, मिथिलापुर वासिनी गोपियां, कौशलपुर वासिनी गोपियां, अयोध्या वासिनी गोपियां, जलंधरपुर वासिनी गोपियां, पुलिंद कन्या गोपियां, मुनि कन्या गोपियां, ऋषि रूपा गोपियां, लोक वासिनी गोपियां, सौ प्रकार की गोपियों के यूथ वहां पर एकत्रित हैं राधा रानी की सेवा में। उन्होंने श्री राधा से निवेदन किया कि माधव पधारे हैं, राधा रानी तो बेहोश पड़ी हैं, कृष्ण के विरह में राधा रानी मूर्छित पड़ी हैं। तो गोपियां सूचना दे रही हैं कि कृष्ण आए, राधा रानी को सूचना दे रही हैं। क्या सूचना दे रही हैं? कि कृष्ण आ गए हैं। तत्रैव सर्वे गोपीनां सतयूथा समागता तस्य निवेदनं चक्रुर माधवागमनस्य हि। ये सुनकर साक्षात वृषभानुवर की पुत्री श्री राधा सहसा उठी और सखियों से घिरी हुई वे श्री कृष्ण को लेवा लाने के लिए आईं, क्योंकि उठने की शक्ति नहीं है, राधा रानी के अंदर उठने की शक्ति नहीं है। तो सखियां के सहारे जो है वो चली राधा कृष्ण को लेवा लाने के लिए चली। उत्थाय सहसा साक्षात वृषभानुवरात्मजा आने तुम आए ओ कृष्णम सखी भी परिवारिता। उन्होंने श्री हरि को आसन दिया, पाद्य अर्घ्य आचमन आदि मनोहर उपचार प्रस्तुत किए, साथ ही कुशल पूछने में अत्यंत चतुर श्री राधा श्री हरि से आदर पूर्वक कुशल भी पूछती जा रही थी। ददावासन पाद्यार्घा नुपचारान मनोहरान वदन्ति सादरं वाक्यं कुशलं कुशलाधिका। करोड़ करोड़ कामदेवों के माधुर्य को हर लेने वाला श्री हरि का दर्शन करके राधा ने संपूर्ण दुख को त्याग दिया। भगवान कृष्ण का दर्शन करके राधा ने संपूर्ण दुख को त्याग दिया। जैसे बोध प्राप्त होने पर ज्ञानी है माया के गुणों को त्याग देता है। युव कंदर्प कोटि नाम माधुर्य हारिणम हरिम दृष्ट्वा राधा जहो दुखम ब्रह्म ज्ञात्वा गुणम यथा। राधा रानी ने प्रसन्न होकर श्रृंगार धारण किया। श्री कृष्ण जब से वृंदावन को छोड़कर गए तब से उन्होंने अपने शरीर पर श्रृंगार धारण नहीं किया था। ये सती के लक्षण है। सती स्त्री पति के बिना अपना श्रृंगार धारण नहीं करती। तो कृष्ण ने वृंदावन त्याग दिया तो राधा रानी ने श्रृंगार धारण नहीं किया। ना कभी चंदन लगाया, ना पान खाया, ना अमृत के समान स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किया, ना दिव्य सैया की रचना की, ना कभी किसी के साथ हास परिहास किया। प्रसन्ना तत्र श्रृंगारम अकरोत् कीर्ति नंदिनी तया नौकार श्रृंगारः पान्थे कृष्णे गते सती। न चंदनम न चाम्बूलम न चंदनम च ताम्बूलम भोजनम च सुधासमम न कृतम दिव्य शयनम हास्यम वा न कृतम क्वचे। परिपूर्णतम भगवान की प्रियतमा आनंद के आंसू बहाती हुई अपने परिपूर्णतम प्रियतम श्री कृष्ण से गदगद वाणी में बोली। परिपूर्णतमम कृष्णम परिपूर्णतमे प्रिया आनंदास्त्रुणि मुंचन्ति प्राह गदगदया गिरा। अब सुनिए बड़े ध्यान से। सुन रहे आप लोग राधा रानी कृष्ण से क्या बोलती हैं, इसको आप ध्यान से सुनिए। श्री राधा ने कहा कि हे प्रिय, यादवपुरी मथुरा कितनी दूर है जो अब तक यहाँ नहीं आए। क्या पूछ रही हैं? यादवपुरी मथुरा यहाँ से कितनी दूर है? वो तो कभी गई नहीं मथुरा, जो अब तक यहाँ नहीं आए कितनी दूर है यहाँ से। वहाँ तुम क्या करते रहे? मैं अपने दुख को कैसे बताऊं? तुम तो सबके साक्षी हो, अतः सब जानते हो। कियन दूरे यदुपुरी नागतम किम करोसि किम बदे हम रहो दुखम भवतो शेष साक्षिणः। अब सुनिए बड़े ध्यान से राधा रानी क्या बता रहे हैं। राधा रानी बताती हैं, राजा सौदास की रानी मदयंती। कौन? राजा सौदास की रानी मदयंती और नल की रानी दमयंती और मिथिलेश नंदिनी सीता, ये तीन स्त्रियां हैं। पहली स्त्री है राजा सौदास की रानी मदयंती, दूसरी स्त्री है नल की प्यारी रानी दमयंती और तीसरी स्त्री है श्री राम की वल्लभा सीता। इन तीनों में से कोई यहाँ नहीं है, फिर किसको रखकर इस विरह के दुख का मैं वर्णन करूं? इन तीनों ने पति के विरह का दुख पाया, लेकिन इन तीनों में कोई नहीं है जिनको सामने रख करके मैं अपने दुख का वर्णन करूं। सौदास राज महिषी दमयंती च मैथिली नास्तत्र काम पुरस्कृत्य वदेहम विरहम रिपुम। ये गोपांगनाएं भी मेरी जैसी परिस्थिति में हैं, अतः ये भी इस दुख का निरूपण करने में समर्थ नहीं है। जैसे चकोरी शरद काल के चंद्रमा को और मयूरी नूतन मेघ को देखना चाहती है, उसी प्रकार मैं तुम श्री वृंदावन चंद्र घनश्याम को देखने के लिए उत्कंठित रहती हूँ। तुम्हारे सखा उद्धव धन्य हैं जिन्होंने शीघ्र ही तुम्हारा दर्शन करा दिया। उद्धव जी धन्य है। इस ब्रज में दूसरा कोई ऐसा नहीं है जिसके प्रेम से तुम यहाँ पर आते। शिकायत कर दी। क्या शिकायत की? कि और तो तुम्हारा किसी से प्रेम नहीं है, उद्धव के कारण ही तुम आए हो। उद्धव ने तुमको विवश किया आने के लिए, नहीं तो ब्रज में तो कोई है ही नहीं जिससे तुम प्रेम करते और आते यहाँ। उद्धव के कारण आए। उद्धव जी धन्य है। हाँ। मत समाना श्रेया गोप्यो गति तुम ना क्षमा कुचिन शरत चंद्र चकोरी वै मयूरी वै घनम नवम श्री वृंदावन चंद्रम त्वाम घन श्यामम समुत्सहे तब सख्यो धवे नासु धन्य ने तुम प्रदर्शिता अन्य कोपी ब्रजे नास्ति यस्य प्रेम्णा तुम आगता। नारद जी कहते हैं राजन इस प्रकार कहती और निरंतर रोती हुई श्री राधा को देखकर श्याम सुंदर का अंग अंग करुणा से भेवल हो गया, उनके नेत्रों से भी आंसू झरने लगे, भगवान भी आंसू बहाने लगे। उन्होंने तत्काल दोनों हाथों से खींचकर प्रियतमा को हृदय से लगा लिया और नीति युक्त वचनों से उन्हें धीरज बंधाया। एवं वदन्ति सततम् रुदन्ति परां प्रियां वेक्ष्य घृणातुरांगः आश्वासयामास नमेन मत्सद्यः प्रगृह्य दोर्भ्यां श्रवदम्बुनेत्रः। श्री भगवान बोले हे राधे शोक ना करो, मैं तुम्हारे प्रेम से ही यहाँ आया हूँ। राधा रानी ने क्या कहा, आप मेरे प्रेम से तो नहीं आते हैं यहाँ ब्रज में, किसी से आपका प्रेम नहीं है, आप तो उद्धव के प्रेम से आए हैं। उद्धव ही धन्य है। भगवान क्या बोले, नहीं मैं तुम्हारे प्रेम से आया हूं, मैं तुम्हारे प्रेम से ही आया हूं। हम दोनों का तेज भेद रहित और एक है, लोगों ने इसे दो मान रखा है। मासोकम गुरु राधे त्वम तत्प्रीत्याहम समागतः आवयोर भेद रहितम तेजस्य एकम द्विधाजन। जैसे दूध में उसकी सफेदी एक है, उसी प्रकार सदा हम दोनों एक हैं। जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम विराजमान हो, हम दोनों का वियोग कभी होता ही नहीं है। यथा ही दुग्धा वल्ये तथा वाम सर्वदा सुभे यत्राहम तुम सदा तत्र विश्लेषो नहीं चावयो। मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ और तुम जगत माता तटस्था शक्ति हो, हम दोनों के बीच में वियोग की कल्पना मिथ्या ज्ञान के कारण है, तुम इसे समझो। पूर्णम ब्रह्म परम चाहम तदस्था तुम जगत प्रसो विश्लेष आवयोर मध्य मृषा ज्ञान एन पश्यस। हे देवी, जैसे आकाश में नित्य विराजमान महान वायु सर्वत्र व्यापक है, जैसे जल सूक्ष्म रूप से सर्वत्र व्याप्त है, जैसे लकड़ी में अग्नि व्याप्त रहती है, जैसे भीतर बाहर स्थित ये पृथ्वी परमाणु रूप से सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ। जैसे जल विविध रंगों से युक्त होने पर भी उनसे पृथक है, उसी प्रकार मैं सबसे सर्वथा पृथक हूँ। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा जलम सूक्ष्म रूपम तेजो व्याप्तम यथा धसी अंतर भरी यथा पृथ्वी पृथंग भूतावरानने तथा विकार रहितो मलवत त्रिगुणे रहम। इसी प्रकार तुम मेरे स्वरूप को देखो और समझो, इससे सदा आनंद बना रहेगा। हे सुमुखी, मैं और मेरा इन दो भावों के कारण द्वैत होता है। तथा तुम पश्यमंद भावम सदानंदो भवे तथा अहम ममेति भावेन द्वितीयोस्ति वरानने। जब तक सूर्य से उत्पन्न हुआ मेघ सूर्य और दृष्टि के बीच में विद्यमान है, तब तक दृष्टि सूर्य का दर्शन नहीं कर पाती। इसी प्रकार जब तक प्राकृत गुण व्यवधान बनकर खड़े हैं, तब तक जीवात्मा अपने ही स्वरूप परमात्मा को नहीं देख पाता। सत्व आदि तीनों गुणों का आवरण दूर होने पर ही वो परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है। यावन घनो मध्यगत तदुत्थितः स्वरूप मर्कम नहीं दृक् प्रपश्यति तावत् परात्मा नमसः प्रधान जैर गुणेषु तथा तेषु गतेषु पश्यति। यदि मन गुणों में आसक्त है तो बंधन कारक होता है, यदि वही मन परम पुरुष में संलग्न है तो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस प्रकार मन को बंधन और मोक्ष दोनों का कारण बताया गया है। उसी मन को जीतकर पृथ्वी पर असंग होकर विचरे। गुणेषु सक्तम किल बंधनाय रक्तम मना पुंज च मुक्तये स्यान् मनोद्वयो कारण माहुरारान् जित्वात् तत्क्यो विचरेद असंगः। हे भामिनी, लोक में मन का संपूर्ण भाव दोनों ओर से परस्पर की अपेक्षा रखकर होता है, एक ओर से नहीं होता, किंतु प्रेम स्वयं ही किया जाता है, अतः मुझ में अपनी ओर से ही प्रेम करना चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं कि प्रेम ऐसे नहीं होता कि आप मुझसे प्रेम करें तो मैं आपसे प्रेम करूं। प्रेम कैसे होता है, आप मुझसे प्रेम ना करें या करें, लेकिन मैं आपसे प्रेम करता हूँ। प्रेम ऐसे होता है, एक तरफ से ही होता है प्रेम। प्रेम के समान इस भूतल पर दूसरा कोई मेरी प्राप्ति का साधन नहीं है। सर्वम ही भावम मनसा परस्परम नहीं कतो भामिनी जायते तथा प्रेम एव कर्तव्य मतो मयि सुतः प्रेमणा समानम भुवि नास्ति किंचित। नारद जी कहते हैं राजन, श्री हरि का ये वचन सुनकर श्री राधा ने गोपियों के साथ उन माधव श्री कृष्ण का पूजन किया। इति वाक्यम हरे श्रुत्वा प्रसन्ना कीर्ति नंदिनी गोपिका भी समम कृष्णम पूजयामास माधवम। तदनंतर कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में गोपियों और श्री राधिका के साथ रास मंडल में उपस्थित होकर साक्षात श्री हरि ने मुरली बजाई। कार्तिक की पूर्णिमा है ना। अथ रात्र्याम हरे साक्षात कार्तिक्याम रास मंडले गत्वा ननाद मुरलीम गोपी भी राधया सह। हे राजन, यमुना के निकट रास की रंगभूमि में श्री राधा और अन्य सुंदरी ब्रजरमणियों के साथ राधा वल्लभ श्री कृष्ण शोभा पाने लगे। यमुना निकटे राजन राधया राधिकापति रामा भी सुंदरी भिश्चा रास रंगेर राजहा। रास में जितनी गोपांगनाएं थी उतने ही रूप धारण करके वृंदावनाधीश्वर श्री हरि दिव्य वृंदावन में विहार करने लगे। जितनी गोपांगनाएं उतने ही रूप धारण कर लिए। यावतीर गोपिका रासे तावद रूप धरो हरि रे मे वृंदावने दिव्य हरिर् वृंदावनेश्वरः। उनके चरणों के नूपुर और मंजीर बज रहे थे, वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। पीताम्बर पहने एक हाथ में कमल लिए प्रातःकालीन सूर्य के समान मुकुट धारण किए और विद्युत के समान जगमगाते हुए सोने के कुंडलों से मंडित होकर बैत की छड़ी लिए बंसी बजाते हुए मेघ की सी कांति वाले श्री हरि नटवर वेश में सुशोभित हुए। कुड़नोपुर मंजीरो वनमाला विराजिता पीताम्बरा पद्मधारी प्रभातार कह किरीट त्रिंग विद्युलता स्फुरन प्रोद्यन हेम कुंडल मंडिता वेत्रभृन वादियन बंसीम नटवेशो घन द्युति। अत्यंत प्रकाशमान कौस्तुभ मणि उनके वक्षस्थल पर दिव्य प्रभा बिखेर रही थी। कानों में चिकने चमकीले कुंडल हिल रहे थे। रासमंडल में श्री राधा के साथ वे उसी प्रकार शोभित हुए जैसे रति के साथ रति पति। स्फुरंत कौस्तुभ रत्नाढ्या प्रचलत स्निग्ध कुंडलः राज राधया रासे यथा रत्या रतीश्वरः। जैसे स्वर्ग में शची के साथ इंद्र हो और आकाश में बिजली के साथ मेघ शोभा पाते हो, वृंदावन में वृंदा के साथ वृंदावनेश्वर की वैसी ही शोभा हो रही थी। सच्या सक्रो यथा स्वर्गे घन संचलया यथा वृंदया वृंद कारण्य तथा वृंदावनेश्वरः। वे वृंदावन यमुना पुलिन वन और उपवन की शोभा देखते हुए गोपियों के साथ गोवर्धन पर्वत पर गए। वृंदावनम च पुलिनम विनान्योपवनानि च पश्यन् गोपी गणे सार्धम गिरिम गोवर्धनम यजाओ। भगवान ब्रजेश्वर ने देखा कि सौयुथ वाली गोपांगनाओं को अपने सौभाग्य पर अभिमान हो उठा, तब श्री राधा के साथ वहीं अंतर्धान हो गए। गोपी नाम सतयूथानाम मानम वीक्ष्य ब्रजेश्वरः भगवान राधया साकम तत्रैवान्तरधीयते। अब गोवर्धन से तीन योजन दूर चंदन की गंध से सुवासित सुंदर रोहित पर्वत पर चले गए। अथ गोवर्धनान दूरे सुंदरम योजन त्रयम श्रीखंड गंध संयुक्तम साये और रोहिताचलम। श्री राधा के साथ वहाँ के लता कुंजों और निकुंजों को देखते और बातें करते हुए सुनहरी लताओं के आश्रय भूत उस पर्वत पर विचरने लगे। लता कुंज निकुंजाश्चा पश्यन् जल्पन्तया सह विचचारे गिरौरम ए कांचनी लतिकालये। वहां बद्रीनाथ के द्वारा निर्मित रमणीय देव सरोवर है। बद्रीनाथ के द्वारा निर्मित रमणीय देव सरोवर है जो बड़े बड़े मत्स्यों, कछुओं और मगर आदि जल जंतुओं, हंस सारस आदि पक्षियों से व्याप्त है। तत्र देव सरोरम्यम बद्रीनाथेन निर्मितम पाठीन कूर्म नक्रादि हंस सारस संकुलम। हजार कमल के दल उसकी शोभा बढ़ा रहे थे, इधर उधर मंडराते हुए भ्रमरों की मधुर ध्वनि से युक्त नर कोकिलों की काकली वहां सब ओर व्याप्त थी। सहस्त्र दल पद्मैश्चा मंडितम तदस्ततः भ्रमर ध्वनि संयुक्तम पुंसकोक्तलैरुत व्रतम। उसके तट पर मंद मंद वायु चल रही थी और प्रफुल्ल कमलों की सुगंध छाई थी। राधा के साथ माधव उस सरोवर के किनारे बैठ गए। थोड़ा सुनिए थोड़ी देर के लिए। विक्षत पद्म गंधाढ्यम तत्तीरम मंद मारुतम रमया राधया सार्धम माधवो ने सादेहा। उसी सरोवर के तट पर महामुनि ऋभु एक पैर से खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। सुनो ध्यान से। उसी तट पर महामुनि ऋभु एक पैर से खड़े होकर तपस्या कर रहे थे और निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तत्पर थे। तत्तीरम प्रतिपश्यंतम प्रतिपश्यंतम ऋभुम नाम महामुनि पदय के निस्थितम सस्वत श्री कृष्ण ध्यान तत्परम। 60,600 वर्षों से निराहार और निर्जल रह करके शांत भाव से तपस्या में लगे थे। 60,600 का मतलब 6,000 तो 66,000 वर्ष हो गए। 66,000 वर्षों से निराहार और निर्जल, ना भोजन ना पानी रहकर तपस्या में लगे थे। श्री कृष्ण ने उनको देखा। षष्ठी वर्ष है सहस्राणी षष्ठी वर्ष है शतानी च निरन्नम निर्जलम शांतम श्री कृष्ण तम न दर्शहा। राधा ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, ये कौन है? माधव बोले, हे प्रिय, इनका महात्म बढ़ाओ, ये भक्त हैं, इन महामुनि की भक्ति को देखो। पप्रच्छ वीक्षितम राधा हसंती प्राय माधवम महात्म्यम गुरु भक्तोयम पश्य भक्ति महामुनि। ये कहकर श्री कृष्ण ने हे रेभो ये नाम लेकर उच्च स्वर से पुकारा, किंतु उन्होंने उनका वचन नहीं सुना क्योंकि वे ध्यान की चरम अवस्था में पहुंच गए थे। अब भगवान बुला रहे हैं तो भी नहीं सुन रहे वो। हे रेभो इति कृष्णेन प्रोक्तम उच्चैर वचा शुभम न स्तुतम तेन किंचिन वा चरमम प्राप्तेन वै। तब श्री हरि उस समय मुनि की हृदय से तत्काल तिरोहित हो गए। हृदय से भगवान ने अपना रूप हटा लिया। श्री हरि को ध्यान से निर्गत होने के कारण न देखकर ऋभु अत्यंत विस्मित हो गए। फिर तो उन्होंने आंखें खोल दी और अपने सामने राधा के साथ श्री कृष्ण को देखा जो अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। ये देखकर वे हरि भक्ति परायण महात्मा शीघ्र उठे और राधा सहित श्री हरि की परिक्रमा करके मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। फिर अत्यंत गदगद वाणी में श्री कृष्ण से बोले। श्री ऋभु ने कहा, श्री कृष्ण और कृष्णा को नमस्कार है, श्री राधा और माधव को नमस्कार है, परिपूर्णतमा और परिपूर्णतम को नमस्कार है। नमः कृष्णाय कृष्णाय राधाय माधवाय च परिपूर्ण तमाय चा परिपूर्ण तमाय चा। देव घन श्याम और श्यामा को सदा नमस्कार है, राशेश्वर और राशेश्वरी को नित्य निरंतर बारंबार नमस्कार है। घन श्यामाय देवाय श्यामाय सततम नमः राशेश्वराय सतम राशेश्वरी नमो नमः। गोलोकातीत लीला वाले श्री कृष्ण को और लीलावती श्री राधा को बारम्बार नमस्कार है। असंख्य ब्रह्मांडों की देवी असंख्य ब्रह्मांडों की को नमस्कार है। गोलोकातीत लीलाय लीलावत्य नमो नमः असंख्यांडादि देव्य चासंख्यांड निधये नमः। आप दोनों पृथ्वी का भार हरण करने के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं और मुझे शांति प्रदान करने के लिए यहाँ पधारे हैं। परस्पर संयुक्त विग्रह वाले आप दोनों श्री राधा और श्री हरि को मेरा नमस्कार है। भूभार हाराय भुवं गताभ्याम मच्छान्तये चात्र समागताभ्याम परस्परम संदित विग्रहाभ्याम नमो युवाभ्याम हरि राधिकाभ्याम। नारद जी कहते हैं राजन, यूं कहकर श्री कृष्ण के चरण कमलों में नेत्रों से प्रेम अश्रु की वर्षा करते हुए महामुनि ऋभु ने अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय उनके शरीर से 10 सूर्यों के समान ज्योति निकली और श्री कृष्ण में लीन हो गई। अपने भक्त की ये प्रेम लक्षणा भक्ति देकर श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए बड़े प्रेम से उनका नाम लेकर पुकारा। तब श्री कृष्ण जैसा रूप धारण किए हुए मुनि श्री कृष्ण के चरण कमल से पुनः प्रकट हुए। देखो कितना आश्चर्य है, जब भगवान ने उनका नाम पुकारा तो कृष्ण जैसा रूप धारण करके उनके चरणों से निकले। उस समय उनका सौंदर्य करोड़ करोड़ कंदर्पों को तिरस्कृत कर रहा था। वे विनय से सिर झुकाए खड़े थे। करुणानिधि श्री कृष्ण ने उन्हें भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया और आश्वासन देकर अपना कल्याणकारी हाथ उनके मस्तक पर रखा। तत्पश्चात श्री कृष्ण और राधा की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करके मुनिवर ऋभु एक मनोहर विमान पर आरूढ़ होकर गोलोक धाम को चले गए। महामुनि ऋभु की ये पराभक्ति देखकर श्री राधा रानी को बहुत विस्मय हुआ। वे बहुत देर तक आनंद के आंसू बहाती रहीं। प्रदक्षिण कृत्य हरिम चराधिकाम प्रलम्ब चारु यरतम मनोहरम गोलोकुलोकम प्रिया ऋभुर्मुनिर विरंजयन मैथिल मंडलम दिशाम श्री राधिका विस्मय मांगता भृशम दृष्ट्वा पराम मुक्तिम ऋभोर महामुने आनंद वारिणी विमुंचते चरम जगाद कृष्णम वृषभानु नंदिनी। ये लीला तो बहुत लंबी है, हमने कम से कम एक कुछ तो सुनाई। बड़ी अद्भुत लीला कि ऋभु महामुनि ने जो है कैसे भगवान के सामने शरीर छोड़ा और उनके शरीर से निकला हुआ प्रकाश कृष्ण के शरीर में समा गया और फिर जब भगवान ने उनका नाम लेके पुकारा तो उनको शरीर प्राप्त हो गया और भगवान के चरणों से निकले है और फिर भगवान की आज्ञा लेके गोलोक धाम में चले गए, है ना। तो आज की रात्रि में ये सब लीलाएँ हुई और बहुत सी लीलाएँ हुई, है ना। श्री कृष्णदास यात्रा महामहोत्सव की, श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की, श्रीमती तुलसी सालिगा में बाह महामहोत्सव की, श्रीपाद निम्बार्काचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्री श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा गौरताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। Oh.